आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। ध्रुत सभा में धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्र आत्मग्लानि से झुके हुए थे। वे अंततः द्रौपदी को भी हार चुके थे। प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहा तुष्ट दुर्योधन जब द्रौपदी को सभा में आने पर विवश करता है तो कृपाचार्य उठकर धृतराष्ट्र से खेल को समाप्त करने को कहते हैं, पर दुर्योधन उनका अपमान कर उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने को कहता है। तब भीष्म पितामह भी खड़े हो जाते हैं, पर दुर्योधन उन्हें भी शांत करा देता है। उसके बाद दुर्योधन के आदेश पर दुःशासन द्रौपदी के कक्ष में जाता है और द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ द्रौपदी को क्रीड़ा सभा में लेकर आता है। द्रौपदी उसे लगातार चेतावनी देती है, उसका भरसक विरोध करती है, पर इससे अधिक कुछ नहीं कर पाती। सभा में असहाय खड़ी द्रौपदी, ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, काका श्री विदुर और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करती है, हे राजाओं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। क्या आप लोग समझते हैं कि मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूं? सभासदों में से किसी के पास द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं होता। तब पितामह खड़े होते हैं और अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे सौभाग्यशालिनी, धर्म का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप होने के कारण मैं तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता। जो स्वामी नहीं है वो किसी पराए धन पर दाव नहीं लगा सकता, किंतु स्त्री को सदा स्वामी के अधीन देखा जाता है, इसीलिए इन बातों पर मुझसे विचार नहीं किया जा पा रहा है। युधिष्ठिर स्वयं को पहले दाव पर लगाकर हार चुके थे, ऐसे में वे स्वयं के स्वामी भी नहीं रह गए थे। तब उनके पास कोई भी धन, यहां तक कि उनकी स्त्री भी उनकी नहीं रही थी, इसीलिए द्रौपदी को दाव पर लगाने का अधिकार वो खो चुके थे, क्योंकि पराधीन व्यक्ति के पास अपना कुछ नहीं होता, उसकी स्त्री भी उसके अधिकार से चली जाती है। इसीलिए युधिष्ठिर स्वयं के हार जाने के बाद द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी नहीं थे। लेकिन तब भीष्म पितामह ये भी कह देते हैं कि स्त्री तो पुरुष के अधीन ही होती है, इसीलिए जैसे ही युधिष्ठिर स्वयं को हार गए वो उसी समय अपने अधीन सब कुछ, यहां तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे। फिर भी द्रौपदी का प्रश्न जस का तस खड़ा रहा। जब युधिष्ठिर स्वयं को हार कर द्रौपदी को भी हार चुके थे, फिर अगला था युधिष्ठिर कैसे खेल सके? तब तो युधिष्ठिर के हारते ही खेल समाप्त हो जाना चाहिए था। तब भीष्म कहते हैं, इन सूक्ष्म बातों पर मैं निर्णय नहीं कर पाया। युधिष्ठिर ने तो स्वयं कहा था कि वे हार चुके हैं, परंतु शकुनी ने ही उन्हें प्रेरित किया कि वे द्रौपदी को दाव पर लगाएं। ये तो शकुनी की प्रेरणा के फल स्वरूप हुआ, ना कि युधिष्ठिर के अधिकार के फल स्वरूप। ऐसे में शकुनी कहते हैं,
चूंकि युधिष्ठिर हार चुके हैं और उनके हारने के साथ ही मेरे द्वारा द्रौपदी जीती जा चुकी है, इसीलिए मैं यदि चाहूं द्रौपदी को दाव पर लगा सकता हूं। मैं जो चाहूं द्रौपदी के साथ कर सकता हूं।
धर्मराज युधिष्ठिर ये नतशर स्वीकार करते हैं कि द्रौपदी अब शकुनी के अधिकार में है और इसमें कोई छल नहीं है। इसके बाद द्रौपदी के प्रश्न का समाधान करने के लिए भीम खड़े होते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि
सिर्फ आपका ही द्रौपदी पर अधिकार नहीं है भ्राताश्री, हमारा भी है, इसीलिए ये अनुचित है। द्रौपदी पर दाव नहीं लगा सकते थे,
लेकिन अर्जुन भीम को समझाते हुए और प्रश्न का निराकरण करते हुए कहते हैं कि
चूंकि हम सभी भाइयों के सर्वस्व पर ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर का अधिकार है, सो द्रौपदी पर भी उनका संपूर्ण अधिकार हुआ। भ्राता युधिष्ठिर को जुए के लिए चुनौती दी गई थी, ऐसे में क्षत्रिय धर्म के अनुसार भ्राता युधिष्ठिर जुए के लिए मना नहीं करने के लिए बाध्य किए गए थे।
द्रौपदी को दांव पर लगाए जाने से महाराज धृतराष्ट्र का छोटा पुत्र युयुत्सु भी संतप्त हो उठा था। तब दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं,
द्रौपदी को दांव पर लगाना भ्राता युधिष्ठिर की अपनी इच्छा नहीं थी, बल्कि उन्हें धूर्त जुआरियों की ओर से प्रेरित किया गया। विशेषकर मामा श्री शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई थी, अर्थात द्रौपदी को दांव पर लगाना अधर्म है।
इसके बाद विकर्ण को फटकारते हुए कर्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है,
चूंकि युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था, सो इस सर्वस्व में द्रौपदी भी निहित है। युधिष्ठिर के इस कार्य का अनुमोदन चारों भाइयों ने भी मौन रहकर किया, ऐसे में द्रौपदी पर दांव लगाया जाना धर्म सम्मत है।
तब दुशासन द्वारा भरी सभा में द्रौपदी की धर्षणा का प्रयास किया जाता है, परंतु भगवान की कृपा से द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास असफल हो जाता है। द्रौपदी के प्रति दुशासन के उस नीच व्यवहार से तथा दुर्योधन के मुंह से द्रौपदी के लिए निकले अपशब्दों को सुनकर भीम सिंह गर्जना करते हैं,
भीम आज इस सभा में प्रतिज्ञा करता है दुर्योधन, मैं तेरी जंघा तोड़ दूंगा और दुशासन भीम तेरी छाती का रक्त पान करेगा एक दिन।
अपमानित द्रौपदी तब कहती है,
इस सभा में जो भी मौन होकर मेरा चीर हरण देख रहे हैं वे सब शीघ्र ही सदा सदा के लिए मौन हो जाएंगे।
द्रौपदी अब भी लगातार अपने प्रश्न दोहराए जाती है, किसी के पास उसके प्रश्न का धर्म सम्मत उत्तर नहीं रहता। तब धर्म और नीति के महान ज्ञाता विदुर खड़े होते हैं और कहते हैं,
यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगाने से पहले द्रौपदी को दांव पर लगाया होता तो वो उचित हो सकता था, पर युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को दांव पर लगाया था, इसीलिए वो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकते थे।
अर्जुन भी विदुर जी की बात का समर्थन करते हैं। इसके बाद सभा में अचानक गीदड़ों की आवाजें आने लगती हैं। इस अपशकुन से डरकर गांधारी और विदुर महाराज धृतराष्ट्र को हस्तक्षेप करने को कहते हैं। तब महाराज धृतराष्ट्र भयभीत होकर कुलवधू द्रौपदी को सांत्वना देते हुए वरदान मांगने को कहते हैं। ऐसे में द्रौपदी सबसे पहले युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त करने का वरदान मांगती है, ताकि कोई भी युधिष्ठिर द्रौपदी के पुत्र प्रतिविंध्य को दास पुत्र न कह सके। इसके बाद धृतराष्ट्र द्रौपदी से एक और वर मांगने को कहते हैं। द्रौपदी भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को उनके धन व अस्त्र शस्त्रों सहित दास भाव से मुक्त करने का वरदान मांगती है। जब धृतराष्ट्र द्रौपदी से तीसरा वर मांगने के लिए कहते हैं तो द्रौपदी मना कर देती है, कहती है,
क्षत्रिय को दो ही वर मांगने का अधिकार है महाराज।
आश्चर्य है कि द्रौपदी स्वयं को मुक्त करने का वरदान नहीं मांगती है, क्यों?
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।